number two. सभी अपने को डबल नाइट फरिश्ता समझते हो। फरिश्ते की विशेष निशानी है, फरिश्ता अर्थात न्यारा और बाप का प्यारा। पुरानी दुनिया और पुरानी देह से लगाव का रिश्ता नहीं, देह से आत्मा का रिश्ता तो है। शायद हमने कल पढ़ लिया है ना, सॉरी। बुक नंबर तीन, अपने को तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो। आत्मा सदा किस तख्त पर विराजमान है जानते हो? इसको कौन सा तख्त कहते हैं? कौन सा तख्त? भ्रुकुटी का तख्त। और आत्मा दिल तख्त शरीर में किस तख्त पर है?
मस्तक
अकाल तख्त। अकाल अर्थात
कुर्सी नहीं,
आत्मा अकाल है, इसलिए उसके तख्त का नाम भी अकाल तख्त है। आत्मा कैसी है? अकाल अर्थात अकाल अर्थात अविनाशी, अकाल अर्थात जिसका विनाश ना हो, अकाल अर्थात सनातन, अकाल अर्थात अनादि। हमारा सारा ज्ञान इस एक चिंतन पर आधारित है, तो हमको आत्मा के विषय में जितनी ज्यादा जानकारी हो उतना अच्छा। और क्या है आत्मा? अमर, अकाल, अविनाशी, एक ही बात है। दूसरी पॉइंट हल्की है, लाइट है, चमकता हुआ सितारा मिसल है, और आत्मा शक्तिशाली है। आत्मा के गुण क्वालिटीज जैसे कि वो अविनाशी है, ये एक हो गया। अविनाशी का हो, अमर का हो, अनाथन सनातन का हो, अनादि का हो। आत्मा अजर है, अमर तो हो गया, अजर अर्थात
जरा,
जरा अर्थात जरा अर्थात बुढ़ापा। आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती। तो दूसरा पॉइंट है आत्मा अजर है। तीसरा और क्या? आत्मा
अव्यय है,
अव्यय,
विकार रहित।
आत्मा में तो विकार होते हैं, अनादि स्वरूप है आत्मा का, संपूर्ण पवित्र।
इनविजिबल
आत्मा अदृश्य है, दिखाई नहीं दे सकती।
आत्मा अक्सर है, अक्सर,
अक्षर अर्थात
अक्षर मन आत्मा,
अक्षय,
अक्षर भी है, अक्षर अक्षर
अक्षर, जिसका कोई अक्षर ना हो, ऐसे
अक्षय अक्षर धाम बोलते हैं ना, आत्माओं का धाम,
अक्षय
अक्षर
हो सकता है।
अभय
आत्मा अक्षय, अक्षय भी है, उसका कभी क्षय नहीं होता। आत्मा अक्षर भी है और
अभय
भय तो आत्मा को ही लगता है ना। आत्मा चेतन है, चेतनता आत्मा का गुण है। आत्मा में कई जन्मों का पाठ नंदा हुआ है। बाबा ने कहा ना, इस बात में तुम्हें वंडर लगना चाहिए, कितनी छोटी सी आत्मा उसमें इतने जन्मों का पाठ नंदा हुआ। तो आत्मा अति सूक्ष्म है, सूक्ष्मातीत, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है कि उसको देखा नहीं जा सकता है। अगोचर है, दृष्टि से जिसे देखा नहीं जा सकता। और आत्मा ही सब कुछ करने वाली, इस तन में आत्मा ही सब कुछ करती है, करता है वो इस तन पे। आत्मा ही देख रही है, आत्मा ही सोच रही है, आत्मा ही निर्णय कर रही है, आत्मा ही बोल रही है। आत्मा में ही मन, जो हम 7 days कोर्स में सबको सुनाते हैं, मन बुद्धि संस्कारमयी है आत्मा। तो योग के समय हमारा चिंतन जो चालू हो वो यहां से चालू हो, कहां से? कि मैं आत्मा हूं, भ्रुकुटी तख्त पर विराजमान हूं, आत्मा एक ज्योति पुंज है, आत्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट है, आत्मा एक ज्योति का कण है। ये उसकी सूक्ष्मता के बारे में। आत्मा अमर है, आत्मा अविनाशी है, सनातन है और आत्मा चेतन है। आत्मा में ही मन बुद्धि संस्कार है, बिना आत्मा के शरीर निष्प्राण है, निर्जीव है, शरीर का कोई अस्तित्व नहीं। आत्मा है इसके लिए शरीर है। और भी कुछ है आत्मा के बारे में?
स्वतंत्र,
आत्मा स्वतंत्र सत्ता है,
सिक्योर है,
सिक्योर,
ऑलवेज सिक्योर।
इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि आत्मा पानी आत्मा को गीला नहीं कर सकता, शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि आत्मा को जला नहीं सकती, हवा आत्मा को सुखा नहीं सकती। ये सारे के सारे पॉइंट्स एक बार योग में रिवाइज करने। और मैं आत्मा इस देह से भिन्न हूं, मैं आत्मा इस देह से अलग हूं, ये भी चिंतन करना है। निरंतर आत्मिक स्वरूप में टिकने का अभ्यास। अगर ये निरंतर स्मृति नहीं है और केवल ट्रैफिक कंट्रोल के समय हम स्थिर कर रहे शरीर को और आत्मा को स्थिर नहीं कर रहे, तो ये केवल अपने ऊपर नियम थोपना है और कुछ नहीं। ये भी एक प्रकार का दमन ही है, ये भी एक सप्रेशन है, जिससे प्राप्ति कुछ नहीं। आत्मिक स्थिति में स्थित रहना अर्थात निरंतर आत्मा के चिंतन में मगन रहना, निरंतर आत्मा के बारे में सोचते रहना। ये तो हो गया स्व के प्रति, और फिर दूसरों के प्रति भी, कि जैसा ये मैं सब हूं वैसे ये सब भी कौन है? आत्माएं हैं। ये तो हमने केवल आत्मा के क्या है अस्तित्व के बारे में सोचा, इसके बाद है आत्मा के समान, आत्मा के गुण, उसका एक अलग चिंतन। तो हम खाली योग करें तो केवल आत्मा के अस्तित्व के बारे में, आज तक आत्मा के गुण विशेष के बारे में, फिर आत्मा के समान क्या है उस बारे में, तो ये भी एक संपूर्ण योग है। क्योंकि जैसे ही हम आत्मा आत्मिक स्थिति में स्थित होते, आत्मा के संबंधित जो भी बातें वो स्वतः याद आती। फिर बाबा को याद करने की अलग से जरूरत नहीं, वो स्वतः ही आत्मा को अपने परमधाम याद आएगा, आत्माओं का देश याद आएगा, बाप याद आएगा। तो आत्माभिमानी स्थिति ही सर्वशक्तिशाली स्थिति। तो बाबा कह रहे हैं, आत्मा सदा किस तख्त पर विराजमान है जानते हो? इसको कौन सा तख्त कहते हैं? अकाल है ना, आत्मा अकाल है। इसके लिए इसकी उसके तख्त का नाम भी अकाल तख्त है। आत्मा शरीर में सदा ब्रिकटी के बीच अकाल तख्त नशीन है। तो तख्त नशीन जो होता है उसको राजा कहा जाता है। तख्त पर तो राजा ही बैठेगा ना, तो आप आत्मा भी अकाल तख्त नशीन राजा हो। मैं आत्मा इस देह की मालिक हूं, ये भी एक सुंदर सा समान है। मैं आत्मा इस देह की मालिक हूं, मैं आत्मा राजा हूं। अकाल तख्त नशीन आत्माएं बाप के दिल का तख्त और विश्व के राज्य का तख्त भी प्राप्त करती है। तो बाप के दिल का दूसरा जो तख्त है वो भी प्राप्त करने वाले कौन है?
अकाल,
जो अकाल तख्त नशीन है अर्थात जो आत्माभिमानी है, जो देही अभिमानी स्थिति में स्थित है। देही अभिमानी स्थिति केवल एक बैठी बैठी अवस्था नहीं है। देही अभिमानी स्थिति अर्थात चलते फिरते उठते बैठते देही अभिमानी स्थिति। अर्जुन, तो तीनों ही तख्त कायम है। कौन से तख्त?
अकाल
तख्त पर तो अभी बैठ गए, दिल तख्त पर कैसे बैठेंगे? जो जो उसने कहा वो सब करना, जो उसने कहा वो करना, आज्ञाकारी अगर बनेंगे फॉलो करेंगे तो बनेंगे, नहीं तो नहीं। तख्त पर बैठना आता है या घड़ी घड़ी नीचे आ जाते हो? जो पहले तख्त नशीन हो सकते हैं वही बाप के दिल तख्त नशीन हो सकते हैं। तो सबसे पहली शर्त क्या है? तख्त पर बैठना। अगर तख्त पर न बैठकर बाप को याद करते तो उसको क्या कहेंगे? भक्त। क्योंकि आत्मा जब आत्मिक स्थिति में स्थित न होकर बाप को याद करती है तो उसमें फिर फरियाद, भक्ति है फिर उस, फिर बाबा से उसमें मांगते रहते ये कर दो ऐसा कर दो, पर जब आत्मा आत्मिक स्वरूप में स्थित है तो उसे मांगने की आवश्यकता ही नहीं। जैसे आत्मा देह से अलग होती है उसमें शक्तियां स्वतः ही भरना चालू हो जाती, शर्त है कि उसको देह से अलग करो। और जो दिल तख्त नशीन है वही विश्व के राज्य के तख्त नशीन हो सकते। तो पहला आधार
अकाल
तख्त, स्वराज्य है तो विश्व राज्य, उसी को बाबा ने फिर अलग अलग शब्द कहे स्वराज्य भी कहा है। जिसको स्वराज्य करना नहीं आता वो विश्व का राज्य नहीं कर सकता। तो स्वराज्य का तख्त है यह भ्रुकुटी अकाल तख्त, बाप और बच्चे के संबंध का तख्त है बाप के दिल का तख्त, इन दो तख्त के आधार पर विश्व के राज्य का तख्त है। तो पहले फाउंडेशन क्या हुआ अकाल तख्त, तो सीधा हम उसी एक प्रश्न पर आ गए कि मैं कौन, और उत्तर तुम हो, प्रश्न का उत्तर ही तुम हो, ये कोई उत्तर दूसरा नहीं दे सकता। इस प्रश्न का उत्तर कि मैं कौन हूं, मैं स्वयं हूं, मैं ही हूं, उत्तर ही मैं हूं। अकाल तख्त नशीन आत्मा सदा कैसे रहती है, नशे में रहती है। तख्त का नशा तो होता है ना, लेकिन यह रूहानी नशा है, यह रूहानी नशा है। बाबा ने कल कहा था तुम्हारी हर बात रूहानी है, कल की मुरली में कहा था तुम्हारी हर बात रूहानी, तो हमारी हर बात रूहानी हो, अलौकिक हो, साधारण ना हो। वो कब होगी, जब हम रूहानी नशे में रहेंगे, अलौकिक नशे में रहेंगे, नारायणी नशे में रहेंगे, इलाही मस्ती में रहेंगे, मौलाई मस्ती में रहेंगे। अल्पकाल का नशा नहीं, नुकसान वाला नशा नहीं, यह रूहानी नशा हद के नशों को समाप्त कर देता है। हद के नशे तो अनेक प्रकार के, और रूहानी नशा एक एक, मैं बाप का बाप मेरा, यह रूहानी नशा है, यह है रूहानी नशा। यह एक प्यार सर्वोत्तम प्यार है, इस प्यार के आगे संसार के सारे प्यार फीके है, नीरस है। आज बाबा ने कहा तुमने वो भी अनुभव करके देख लिए, एक बाप का ही प्यार निस्वार्थ है और अविनाशी है, बाकी सारे प्यार अल्पकाल के हैं। बाप का बन गया यह रूहानी नशा, तो यह रूहानी नशा सदा रहता है। योग कोई एक क्रिया नहीं है, यह एक अवस्था है, बैठी बैठी करने वाली कोई क्रिया नहीं है, या फिर चलते चलते करने वाली क्रिया नहीं है, यह एक अवस्था है। आत्माभिमानी स्थिति एक अवस्था है, कितना समय बैठ कर कौन कितना कर रहा है या चल फिर कर कौन कर रहा है, ये उससे कोई उससे संबंध नहीं है, ये एक अवस्था है आत्मा की, जो कि रात में 2 बजे भी अगर उठ गए तो याद आए कि कौन हूं मैं, पहला ही संकल्प। ऐसी हमारी आत्माभिमानी स्थिति पक्की करनी है, तो सारा पुरुषार्थ ही आत्मा समझने पर, और दूसरा पुरुष देह नहीं समझने का। जैसे सूखा नारियल होता है ना, पहले गीला नारियल, एक है सूखा नारियल एक है गीला, गीला कैसा होता है जिसमें वो दोनों एक होते हैं अंदर का, और पर जब वो सूख जाता है तो उसको आप ऐसे ऐसे हिला सकते हो, अंदर का अलग बाहर का अलग, तो ऐसा अनुभव हो कि ये अलग और वो अलग, वो संपूर्ण स्टेज की निशानी है कि दो भिन्न भिन्न नजर आए। तो बाबा कहते हैं वो भी एक समान, बाप का बन गया यह रूहानी नशा है, ट्रांसपेरेंट नहीं, अलग अलग
अलग अलग।
सूखा नारियल को जब हिलाओ आप तो वो अलग वो अलग
और क्लियर।
यह उतरना चढ़ना, कभी ज्यादा चढ़ना कभी कम कर चढ़ना, अगर कोई राजा हो तख्त भी हो लेकिन तख्त का राजाई का नशा नहीं हो तो वह राजा बिना नशे के राज्य कैसे चलेगा करेगा। अगर आत्मा रूहानी नशे में नहीं तो स्वराज्य कैसे कर सकेगी, राजा राज्य में हलचल होगी। देखो प्रजा का प्रजा पर राज्य है तो हलचल है, अगर आत्मा स्वराज्य के नशे में नहीं तो क्या हो जाएगा, प्रजा का प्रजा पर राज्य हो जाएगा। ये कर्मेंद्रिय ही राज्य करती है, तो प्रजा का राज्य हुआ ना, उसका नतीजा होगा हलचल। तो सदा तख्तनशीन आत्मा का रूहानी नशा रखो, ऐसा श्रेष्ठ बाप के दिल का तख्त सारे कल्प में नहीं मिल सकता। अभी बाबा दूसरा तख्त है दिल तख्त। दिल तख्त नशीन कौन बनेंगे, जो आज्ञाकारी है, जो फॉलो फदर करने वाले है, और जो वफादार है, फरमान बरदार है, और निश्चय बुद्धि है, और
कदम पर कदम
ईमानदार,
ईमानदार ओके,
जो
अकाल तख्त पर है वही दिल तख्त पर है। अकाल तख्त में बैठते ही सब कुछ सतही होते जाएगा। अकाल तख्त पर बैठी हुई आत्मा कभी श्रीमत का उल्लंघन नहीं करेगी, छोटी छोटी अवज्ञा उससे नहीं होगी। आत्मा अभिमानी स्थिति में किए जाने वाले कर्म सतही श्रेष्ठ होते हैं। जहां जहां देह अभिमान आया वो कर्म नीचे चले जाते हैं। आत्मा अभिमानी स्थिति में पूछे हुए प्रश्न ही श्रेष्ठ प्रश्न होते हैं। जो आत्मा की गहराई से निकलते हैं ऐसे जो प्रश्न है वो श्रेष्ठ पद प्रश्न होते हैं, उनके उत्तर मिलते हैं। हमने देखा होगा दादियों के क्लास में कई लोग प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न पूछने वालों को प्रश्न इतना मूल्यवान नहीं है, मूल्यवान है मेरा प्रश्न। इसके लिए क्लास पूरा होने के बाद दादी को पूछते आपने हमारे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। वो प्रश्न उतना मूल्यवान नहीं था, परंतु मेरा प्रश्न ज्यादा मूल्यवान हो जाता है। बाकी हमारा जो प्रश्न है उसका उत्तर तो किसी और के प्रश्न के उत्तर में भी समाहित था, पर वो हम नहीं देख रहे। हमें क्या महत्वपूर्ण है, मेरा। तो ये सुनते समय भी हमारे मन में अगर कोई प्रश्न है उसे पूछने की बजाय सुनाने वाला कुछ और सुना रहा है, उसी में हमारा प्रश्न है। कई प्रश्न पूछते हैं और हमारे प्रश्न भी उधार होते हैं, उधार लिए हुए
प्रश्न।
हमारे अपने अंदर से निकले हुए प्रश्न नहीं होते, हमें वो इतनी जिज्ञासा नहीं है कि उस प्रश्न का उत्तर करो। कई लोग आते पूछते पुरुषार्थ कैसे करें, श्रेष्ठ पुरुषार्थ की विधि बताओ 18 जनवरी के लिए। उनके साथ 10-15 मिनट बैठो और उनके जीवन के बारे में पूछो, 15 मिनट में बैठने के बाद ऐसा पता चलता है उसको तो कुछ लेना देना ही नहीं है पुरुषार्थ से, ये तो ऐसे ही पूछ रहा है। जीवन में तो कुछ और ही चालू है, केवल पुरुषार्थ के लिए कोई दिखा अच्छा पुरुषार्थी तो उससे पूछ रहे कि श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने की विधि बताओ, स्थिति को श्रेष्ठ कैसे बनाओ। सारे प्रश्न भी उधार लिए हुए और प्रश्न पूछ रहे इसके लिए पूछ रहे कि मैंने पूछा, मेरा प्रश्न, वहां देह अभिमान है। नहीं तो आत्मा के सारे प्रश्नों का उत्तर स्वतः ही उसको मिल जाएगा जैसे ही वो आत्माभिमानी स्थिति में स्थित हो जाएगी।
पुरुषार्थ की लगन है तभी तो पूछ रहे।
पुरुषार्थ की लगन भी है वो तो है, परंतु वो प्रश्न कितनी अंतरतम से आ रहा है, कितनी गहराई से आ रहा है। बाबा ने सभी प्रश्नों के सभी उत्तर बाबा दे चुके हैं, ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर देना भी बाकी है। खाली आपने एडमिशन लिया है, कब, जून में एडमिशन लिया, क्लास चालू हुई है जनवरी में, और फिर आप पूछते हो इसका प्रश्न क्या, उसका उत्तर क्या, इसका उत्तर क्या है, पुरुषार्थ कैसे करें, श्रेष्ठ स्थिति कैसे बनाए।
मिलने के बाद वेरीफाई करते रहते,
आपने एडमिशन लेट लिया है इस विश्वविद्यालय में, तो आपको 69 से जो कुछ उसने कहा है अव्यक्त का ले लो, खाली साकार तो छोड़ दो, 69 से उसने जो कुछ कहा है वो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, चिंतन मनन पठन पाठन सब कुछ करना पड़ेगा। आज बाबा ने कहा एकांत में जाकर मनन करो, जो आनंद योग में है वो ज्ञान के चिंतन में भी वही आनंद है। आत्मा योग के पीछे लगी है और सेवाओं के पीछे लगी है और उसी से अपनी स्थिति को बनाना चाहती है, परंतु वो संपूर्ण मार्ग नहीं। बाबा ने ज्ञान को भी उतना ही महत्व दिया है। निरंतर अगर बुद्धि में ज्ञान है तो चलते फिरते भी आत्माभिमानी स्थिति रह सकती है। केवल जब पांडव भवन में आ रहे और बाबा के कमरे में जा रहे तब आत्माभिमानी स्थिति और जैसे ही गेट से बाहर वैसे देहाभिमान की बातें, राज बाबा ने कहा ना, देहाभिमान की बातें, व्यर्थ बातें, अनर्गल बातें, विस्तार की बातें, इन सब में नहीं जाना है तुमको। आत्माभिमानी स्थिति अर्थात एकांत, तो वो निरंतर अवस्था हो हमारी। तो बाबा कहते हैं जो बाप के दिल तख्त नशीन आए, मैं अभी बाबा देखो कितनी सारी बातें सुना रहा है कि जिस जो दिल तख्त नशीन है उसको क्या क्या हो जाता है, उसके आगे कोई विघ्न कोई समस्या नहीं आ सकती। अगर वास्तव में ऐसा है तो न प्रकृति वार कर सकती है न माया वार कर सकती है। दिल तख्त नशीन बनना अर्थात सहज प्रकृति जीत माया जीत, कोई विकार का संकल्प नहीं, कोई विकार की टचिंग नहीं, कोई देह की आकर्षण नहीं, ऐसी अवस्था हो सकती है अगर आत्माभिमान स्थिति है और परमात्मा तख्त नशीन स्थिति है। तो ऐसे प्रकृति जीत माया जीत बने हो, प्रकृति भी हलचल में जाती है, प्रकृति की हलचल ब्राह्मण आत्माओं को हिला देती है, तो हलचल नहीं होनी चाहिए। तख्त नशीन नहीं है तो हलचल में आते हैं, अगर तख्त नशीन हो तो किसकी हिम्मत नहीं हलचल में लाए। अगर हम आत्माभिमान स्थिति में है तो किसी की हिम्मत नहीं कि हमको हिलाए, पर दिन भर से शाम तक कितनी बातें हिलाती है, किसी के बोल हिलाते हैं, किसी का व्यवहार हमको हिला देता है, थोड़ी सी कोई बीमारी हुई तो हिल जाती है आत्मा पूरा, हजार संकल्प चलते हैं, कौन मुझे देखेगा, मेरा क्या होगा, ठीक होगा या नहीं होगा। बड़े बड़े योगी जो दिन रात योग करते हैं उनकी भी स्थिति हिल जाती है, क्योंकि ज्ञान का मनन चिंतन और ज्ञान से अपनी स्थिति को शक्तिशाली नहीं बनाया है। तो दोनों चाहिए, ज्ञान और योग। तो हलचल में आना अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हो जाता है, तो परवश हो गए ना। बंधना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब परवश हो जाते हैं तो बंध जाते हैं। तो परवश आत्मा हो या स्वतंत्र आत्मा, मुक्त कब होंगे? जीवन मुक्ति का मजा तो अभी है, यह है संगम युग की जीवन मुक्ति, यही मुक्त होना है सारे बंधनों से, सारी परवशता से, सारी गुलामी से। कल भी कहा था भविष्य में जीवन मुक्ति और जीवन बंध का कॉन्ट्रास्ट नहीं होगा, लेकिन इस समय तो समझते हो ना कि जीवन बंध क्या है, जीवन मुक्ति क्या है। इस समय के जीवन मुक्त का अनुभव श्रेष्ठ है। आत्मा में रहते ही आत्मा शरीर में नहीं है यह अनुभव करना है, आत्मा में रहते ही आत्मा परम धाम में है यह अनुभव करना है, आत्मा में रहते ही आत्मा सतयुग में है यह अनुभव करना है, आत्मा में रहते ही आत्मा मंदिरों में जो जड़ मूर्ति है और जिसकी पूजा हो रही है वो अनुभव करना है, आत्मा में शरीर में रहते आत्मा का शरीर में रहते ही परिष्ठ स्वरूप का अनुभव करना है, आत्मा में भी रहते और आत्मा का ही अनुभव करना है, आत्मा से आत्मा का अनुभव करना है। मैं आत्मा मुझी को जानना है, सारा जो अध्यात्म है वो इसी के लिए, ये सबसे पहला हमारा चैप्टर है, इसी को अभी तक पक्का नहीं किया है, अभी तक भी देह खींचता है। इसी शरीर में रहते हुए पांचों स्वरूप का अभ्यास, ये हमारी मंजिल है। जीवन है, में है लेकिन मुक्त है। कल परसों का अभ्यास बाबा ने बताया था ना, एक सेकंड में शरीर में आना और शरीर से निकल जाना। आप लोगों का स्लोगन है मुक्ति और जीवन मुक्ति क्या है? जन्म सिद्ध अधिकार है। तो अधिकार प्राप्त किया है या जब परमधाम में जाएंगे तभी प्राप्त करेंगे? वहां तो पता ही नहीं पड़ेगा मुक्ति क्या है, जीवन मुक्ति क्या है, इसका अनुभव तो अभी है, अनुभव ही हो ना। सभी ने जीवन मुक्त का अनुभव किया है, जो सतयुग में जाएंगे तब करेंगे। ब्राह्मण जीवन में जीवन मुक्ति का अनुभव हो सकता है? किसी ने कहा हो सकता है, तो बाबा ने क्या कहा? बाबा ने पूछा जीवन मुक्ति, ब्राह्मण जीवन में जीवन मुक्ति का अनुभव हो सकता है? किसी ने कहा हो सकता है, तो बाबा ने कहा तो होता है। बाप दादा ने पहले भी सुना है कि जब आपकी रचना, कौन है हमारी रचना? कमल पुष्प क्या करता है कि विशेषता है न्यारा रहता है, जल में रहता है पर जल के बंधन से मुक्त रहता है। तो मनुष्य आत्मा रचता है और वह रचना है, तो रचना में यह विशेषता है और आप मास्टर रचना में, रचता में नहीं। भगवान को आश्चर्य लग रहा है,
अपनी शक्ति रचना
है ना। कभी भी बंधन मुक्त के बजाय अगर बंधन युक्त हो जाते हैं, बंधन में फंस जाओ, तो आपके सामने क्या करो, आपकी जो रचना है कमल पुष्प का दृष्टांत जो है, जो न्यारा प्यारा रहता है, उसको सामने ला। तो सदा बन जाएंगे, थोड़ा टाइम बनते हैं, थोड़ा टाइम नहीं बनते, इसमें मजा नहीं है। कभी बंधन मुक्त, ये अच्छा लगता है, तो जो चीज अच्छी नहीं लगती उसे छोड़ देना चाहिए, या थोड़ा थोड़ा रखा जाता है। तो जीवन मुक्त बनने की विधि क्या है, न्यारा और प्यारा बनने की विधि क्या है, तख्त नशीन बनो, सदा तख्त नशीन आत्मा बन जीवन मुक्ति का अनुभव करते रहो। यह जीवन मुक्ति की सदा स्थिति बहुत प्यारी है। तो आज अभ्यास क्या करना है, अकाल तख्त पर बैठने का अभ्यास करना है, और दूसरों को भी अकाल तख्त पर बैठा हुआ देखना है, और आत्मा के जितने उसकी जो वास्तविकता है वो सारों का चिंतन करना है, आत्मा के सारे गुणों का चिंतन करते रहना, आत्मा के समान का चिंतन करते रहना, ये तीन बातें हैं। इस तीन को करते रहेंगे तो स्वतः ही दिल तक नशीन बनेंगे, और स्थिति एक ही दिन में कहां से कहां ऊपर। ओम शांति।